डिजिटल फाइनेंशियल घोटालों की महामारी। तकनीक में तेजी से एडवांस हो रहे घोटालेबाजों से एक कदम आगे रहना जरूरी है। हालांकि मैं आमतौर पर निवेश के विषयों पर ही ध्यान केंद्रित करता हूं, पर आज मैं फाइनेंस के एक अलग पहलू पर चर्चा करने के लिए गियर बदल रहा हूं। डिजिटल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऐसी कहानियां अब आम होती जा रही हैं जहां डिजिटल चोरी में खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स को निशाना बनाया जाता है। क्या फाइनेंशियल धोखाधड़ी की बाढ़ ही आ गई है? ऐसी धोखाधड़ी जहां आपको कोई कॉल करके एक कहानी सुनाता है और इस कहानी का अंत अगर आप भोले भाले हैं तो किसी को डिजिटली पैसा देने में होता है। सुनने में आया है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे यहां धोखाधड़ी की करोड़ों कोशिशें हुई हैं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसके परिवार में, दोस्तों में या साथ में काम करने वाले ने हाल के महीनों में इसका सामना नहीं किया हो। अगर हमारे पास असल में इस तरह के फ्रॉड की खबरों का पूरा कवरेज है, अगर फोन रखने वाला हर एक व्यक्ति ऐसी कोशिशों का सामना कर रहा है, तो ये पक्का है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसी करोड़ों कोशिशें हुई होंगी। कहीं कोई वास्तविक डेटा नहीं है, लेकिन जिनसे भी मैंने बात की है उन सब ने मुझे यही कहा है। बड़े पैमाने पर होने वाले ये फ्रॉड किस तरह के हैं, इसके कुछ दूसरे सुराग भी मौजूद हैं। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किए गए मैसेज मिलने के बारे में बताया है जो ऑटोमेटेड रिस्पांस चाहते हैं। फोन पर एक आवाज कुछ इस तरह कहती है, आपके भेजे कुरियर पैकेज में एक कानूनी समस्या है, कृपया विस्तार से जानने के लिए एक दबाएं। अपराधियों के लिए अपने फ्रॉड का दायरा बढ़ाने का ये एक शातिराना तरीका है। जिन लोगों ने इस तरह के घोटाले के बारे में सुना है वो फोन काट देंगे, जबकि भोले भाले शिकार एक दबा देंगे। ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी की सफलता का रेट बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन एक फिल्टर के तौर पर काम करता है। इससे पता चलता है कि इन घोटालों को चलाने वाले लोग कितने संगठित हैं और एक आम बिजनेस की तरह IVR सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनका इस्तेमाल ये घोटालेबाज कर रहे हैं। क्लासिक तरीका है कि एक बुजुर्ग शख्स को कुछ कॉल आती है और OTP मांगा जाता है, और फिर पता चलता है कि उनके अकाउंट से नेट बैंकिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आमतौर पर ये लेन देन किसी ऐसी चीज के लिए होता है जिसे आसानी से कैश कराया जा सकता है या बेचा जा सकता है। हाल के दिनों में कई घोटालेबाजों ने डर को एक ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको बताया जाता है कि उनके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है या उनके नाम से या उनको भेजे गए किसी कुरियर में ड्रग्स मिली है। ये बातें कुछ ऐसी होती हैं कि लोगों के लिए शांत होकर सोचना समझना मुश्किल हो जाता है। फोन पर धोखाधड़ी करने वालों के पास शिकार को मूर्ख बनाने का लंबा अनुभव होता है, लेकिन आम लोगों के पास उनसे निपटने का कोई अनुभव नहीं होता। इसे रोकने का स्पष्ट तरीका है बैंकिंग सिस्टम। डिजिटल धोखाधड़ी बैंकों के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ही लूट को अंजाम देती है। यही वो चीज है जो इस तरह के अपराध को संभव बनाती है, और यही इन्हें रोका भी जा सकता है। मगर यही इसकी कमजोरी भी है। जहां कुछ खबरें दिखी हैं जो बैंकों को गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सिस्टम या ऐसी किसी चीज से जुड़ने को लेकर है, पर यह भी साफ है कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, और असल में यह संभव भी है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरह से KYC वाले सिस्टम में पैसे का पता न चल पाने का कोई कारण नहीं हो सकता। भले ही कोई घोटालेबाज लूट को कितने ही बैंक खातों में कितनी ही तेजी से क्यों ना बांट दे और कैश निकाल ले, इसके पता न चलने का कोई कारण ही नहीं है। दरअसल इनके पता लगाने के रास्ते में जो चीज आड़े आ रही है ना, वो है पुराने और धीमे सिस्टम जो इस तरह के अपराध को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ हलचल देख रहा हूं और लगता है कि अंततोगत्वा एक नया सिस्टम खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर मैं अपनी सांस नहीं रोकूंगा। जब तक एक बेहतर सिस्टम विकसित होता है, हमें खुद को और अपने परिवार के बुजुर्गों को इन घोटालों का शिकार होने से बचाना चाहिए। घोटालेबाजों की आम रणनीति के बारे में खुद को शिक्षित करना, फोन या ईमेल पर संवेदनशील जानकारी साझा न करना, संदिग्ध कॉल्स को तुरंत काट देना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना और नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की निगरानी इन अपराधों को रोकने में काफ़ी मदद कर सकता है। जब तक सिस्टम में ये बड़े बदलाव लागू नहीं हो जाते, सतर्कता और सावधानी इन टेक्निकली तेजी से एडवांस होते घोटालों के खिलाफ हमारा सबसे अच्छा बचाव होगा। ये वो काम है जो किए जाने चाहिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बस इतना ही करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ ऐसा घोटाला हुआ है, तो इन स्पष्ट और सरल उपायों ने उन्हें बचा लिया होता। ये पॉडकास्ट धीरेंद्र कुमार के कॉलम फर्स्ट पेज से लिया गया है। बचत और निवेश पर दूसरे आर्टिकल्स के लिए आप धनक.com पर लॉगिन कर सकते हैं।